अब अगली आयतों में तो खुलकर अल्लाह ने एक गिरोह से आपका मेरा तारुफ करा दिया, और ये वो चीज़ें हैं कि जिसको फिर कहूँगी कि आईने के सामने खड़े हों तो खुद को देखें। कोई दूसरा किसी को आईने में अपने में नहीं देख सकता। अल्लाह ताला ने यहाँ आयत में मुनाफिकों की डिटेल्स और इससे चंद आयतों के बाद इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे मोमिनों की भी डिटेल्स बता दी कि तुम्हें फिक्र लग गया ना, ईमान है कि नहीं, कुफर तो नहीं है, निफाक तो नहीं है, तो फिर आओ देखो आयत 67 से 72 तक एक ही अब मौजू चलेगा। फरमाए अल मुनाफिकूना और मुनाफिक मर्द, वल मुनाफिकातु और मुनाफिक औरतें। क्या ये दोनों को अलग कहने की ज़रूरत थी? क्योंकि कुरान पाक में देखिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर तो सारे इकट्ठा जमा आता है। नहीं, यहाँ औरतों और मर्दों को अलग अलग रखना एक तो इस्लामिक कल्चर को दिखाता है, क्योंकि औरतों को औरतों में और मर्दों को मर्दों में रखा, यानी इंटरमिंगल होने नहीं दिया, मिक्स नहीं होने दिया। क्या कहा? बादहुम मिन बाद, सब एक दूसरे में से हैं। मुराद क्या है कि सब मुनाफिकों का आपस में गठजोड़ है, अंदर से ये सब एक है, ये मुराद है बादहुम अलाबाद का। कैसे? अब 1 2 3 लिखिएगा इनकी सिम्टम्स। नंबर एक, यामुरून बिल मुनकर। हैरत हुई पढ़ के, ये बदी का हुक्म देते हैं, क्योंकि पहले पारे से लेकर ख़ास तौर पर चौथे पारे में तो बार बार पढ़ते रहे कि यामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर, लेकिन यहाँ तो तरतीब उलट गई है, यामुरून बिल मुनकर व यनहौन अनिल मारूफ। बदी का हुक्म देते और नेकी से रोकते, यानी इनकी पॉलिसी क्या है? अल्लाह के हुक्म के खिलाफ। अल्लाह कहता है मारूफ का हुक्म दो, मुनकर से रोको, ये उसके ऑपोजिट चलते हैं। कैसे? दूसरों से हमदर्दियाँ जता जता कर उनको नेकियों से दूर रखते हैं। देखो अपने खून पसीने की कमाई को अब इधर ज़ाया करोगे, अब सारा इनको दे दोगे, अब बच्चों का भी कुछ फिक्र करो, अब सारा वक्त इधर लगाओगे, ये करोगे, और सारा माल मौलवियों के लिए रह गया, ऐसी बातें। तो क्या पता चला? मुनाफिक की पहली अलामत कि वो बुराइयों का इश्तिहार होता है, खोल खोल के लोगों को दिखाता है, देखो ये क्या चीज़ है और वो क्या चीज़ है। और आप इस पर ज़रा सा गौर करें तो आज तो मुआशरा मिलजुल के ये फरीज़ा अंजाम देता दिखता है। मीडिया ने इसको आसान कर दिया। मुझे तो कभी कोई ऐसा स्लॉट देखने का मौका भी मिल जाए, अगर कहीं राह जाते कोई झलकी को कुछ, तो मुझे ये आयतें याद आती हैं कि वाकई यामुरूना बिल मुनकर और बादहुम अलाबाद, बाज बाज में से अपने ओन पे आप देखिए कि वो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन कभी आप मजाक तो देखें, मुझे किसी का क्लिप किसी ने भेजा, हालांकि वो दीनदारी के नाते से बनाया हुआ था कि एक दीनदार हैं बड़े मारूफ, तो वो किसी टीवी के ऊपर आने वाले किसी स्लॉट पे तनकीद कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं कि औरतों और लड़कियों बहनों को फुटबॉल खेलते और पता नहीं क्या कुछ करते दिखाया जाए, और उन्होंने किसी एक मौके का वहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ था कि तस्वीर आई है, पर वो क्लिप दिखाने में कभी उसको क्लोजअप करके कभी उसको स्लो पॉज करके कुछ 10 दफ़ा वो लड़कियों का गलत कपड़ों में क्रिकेट या पता नहीं क्या खेलता दिखाया गया। तो मैं सोच रही थी कि ये है दोस्त के रंग में दुश्मन। वैसे तो शायद ही किसी ने उन लड़कियों का मैच देखा हो, लेकिन अब जब शो में ये प्रोग्राम दिखाया गया और कुछ क्या कह रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, चार पता नहीं 20 सेकंड का एक क्लिप था, उसको ही आपने इतना बड़ा मसला बना लिया। खुद खोल खोल के दिखाते हैं, हाईलाइट करके दिखाते हैं। याद रखिए, शराब का एक घूंट भी शराब का ही घूंट है। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं। खैर, हम इसको ज़रा इकट्ठा पढ़ के इनका एक इमेज तो बनाएं कि तसव्वुर कैसा आता है ऐसे लोगों के बारे में, फिर इकट्ठी बात कर सकते हैं एक एक पे। पहली चीज़, यामुरूना बिल मुनकर। दूसरी बात, यनहौना अनिल मारूफ, यानी नेकियों से रोकते हैं, हिम्मत ही तोड़ेंगे। सोच लो, कमिटमेंट बड़ी है, 6 माह रह गए बच्चे की शादी में, घर भी तो बनाना है और ये भी तो करना है, छोड़ दो अब सब कुछ चलो। तीसरा काम, व यक़बिदून अयदीहुम, अपने हाथों को बंद रखते हैं। किससे? अल्लाह के रास्ते में खर्च से बंद करते हैं। चौथी बात, नसुल्लाह, अल्लाह को भुला गए, यानी खुदा फरामोशी की ज़िंदगी है इनकी, लगता ही नहीं इनका कोई खुदा है। अल्लाह ने इनके साथ क्या किया? फनसीयहुम, अल्लाह इनको भुला गया कि तुम नहीं मुझे याद करते, मैं तुम्हें क्यों करूं, क्योंकि पीछे अब पढ़ चुके फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। यहाँ कह दिया तुम भूलते हम तुम्हें बुलाते हैं। आगे आप सूरह हशर में पढ़ेंगे, वहाँ क्या आता है कि अल्लाह को भूले, अल्लाह ने इनको इनकी जानें भी भुला दी, जिसको शायर कहता है कि तू मेरा नहीं बनता अपना तो बन। तो इनका हाल क्या है? खुदा फरामोश है। और वाकई लोग फिर भूल जाते हैं। कि वो कभी खुदा को याद रखते हैं। मैं कभी किसी ऐसी सिस्टर से जिससे बहुत प्यार हो, बेतकल्फी हो, पहले कुरान के साथ ऐसे जुड़े हुए थे कि जैसे वो कहना चाहिए कि जिल्द के साथ सफ़े जुड़े होते हैं, अब ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आईं और आहिस्ता आहिस्ता कमाने निकले, पढ़ने निकले, अलग हो गए, तो एक दिन बड़े बेतकल्फी में मेरे साथ बैठी थी, तो मैंने उन्हें कहा सच बताओ खुश हो, तुम्हें कैसा लग रहा है, एक वक्त है तुम्हारी सुबह शाम में कहाँ थी रब के। तो सोच के कह रही अभी मैं खुश हूँ उस्ताजा, अभी मैं खुश हूँ, यानी अंदर भी जोश है ना, और अभी जो सोच रही वो हो रहा है ना, एक ग्रेड से दूसरा तीसरा, लेकिन उनकी बात से मुझे समझ आ रहा था कि सभी में क्यामत छुपी हुई है, कि तुम्हें भी सोचना ही नहीं चाहती कि मैं क्या छोड़ के आई हूँ। मुझे याद आती हैं वो जगह, वो बातें, वो सारी, बट अभी मुझे क्रेविंग है कि मैंने वहाँ तक पहुँचना, तो मैंने कहा वहाँ पहुँच के कुछ मिलेगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अल्लाह कहते नसुल्लाह व नसीहुम इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून। इंजाम देख लिए, नंबर एक अल्लाह उनको भूल गया, नंबर दो मुनाफिक फासिक है, नाफरमान है। अगली आयत वादल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाती, अल्लाह ने वादा किए इन मुनाफिक मर्दों और औरतों से, वल कुफार और काफिरों से, नार जहन्नम जहन्नम की आग का, कब तक, खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले उसमें, हिया हस्बुहुम, ये उनको काफ़ी है। ये हिया में जो या की ज़मीर है ये क्या है, जहन्नुम फीमेल है, मोनस के लिए आता है लफ्ज़ ये, तो कहा ये जहन्नुम इनको काफ़ी है, नहीं इनकी खूब खबर लेगी ये जहन्नुम, और अगली सज़ा है वलानहुमुल्लाह, और लानत की उन पर अल्लाह ने। टोटल कितनी सज़ाएं हुई हैं मुनाफिकों की, दोहरा लीजिए, नंबर एक अल्लाह उनको भूल गया, नंबर दो ये फासिक हैं, नंबर तीन अल्लाह ने ऐसे मुनाफिकों से जहन्नुम में काफिरों के साथ जमा होने का वादा किया, चौथी बात इनको जहन्नुम काफ़ी है, पांचवी बात इन पे अल्लाह ने लानत की, और छठी बात इनके लिए वलहुम अजाब मुकीम, शिद्दत वाला, कायम रहने वाला अजाब है। देखिए एक दर्द होता है जो कभी कभी होता है, फिर कभी कुछ दिन ठीक रहते हैं, आप कभी हो जाता है, वो भी दर्द है, लेकिन एक है मुस्तकिल दर्द, सर दर्द ही ले लीजिए, 4 दिन मुस्तकिल सर दर्द में रहें तो हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई हो और अल्लाह रहम करे कि ब्रेन की नसी फट जाए, मुस्तकिल अजाब। क्यों? क्योंकि ये मुस्तकिल इस्लाम से दूर थे। और अगली चीज़ देखिए 7वीं, जो अल्लाह इनका इंजाम बता रहे हैं 69 में, कल्लज़ीन मिन कब्लिकुम, तुम मुनाफिक लोग इन लोगों की मानी दो जो तुमसे पहले थे, वो कौन थे, कान व शद मिनकुम कुव्वतम व अक्सर अमवालम व औलादा, वो तुमसे कहीं बढ़कर थे ताकत में और कहीं ज़्यादा थे माल और औलाद में। ये भी एक कॉमन थिंग रही, निफाक का पौधा लगा ही कसरत वालों के साथ है, हैव्स के साथ। बहुत कम हुआ कि इंसान किसी भी मामले में कम हो, मतलब माल में छोटा है, गरीब है, बच्चे नहीं है, और वो मुनाफ़त करे, वो तो एहसास महरूमी में मारा होता है। ये जो परपुरजे निकलते हैं ना और बड़के निकलती हैं, ये कुछ चार दाने घर में आते हैं फिर निकलती हैं, अल्लाह ने पिछली कौमों से आद समूद और वगैरह के इशारे दे दिए कि ताकत और दौलत के अतबार से वो तुमसे बढ़के थे, फस्तम तो भी खलाकिहिम, तो उन्होंने अपने हिस्से का फ़ायदा उठा लिया, फस्तम ता तुम भी खलाकिकुम, और तुम भी अब अपने हिस्से के फ़ायदे उठा चुके हो। यहाँ देखिए धमकी है कि तुम्हारी मोहलत अब ख़त्म होने वाली है, बहुत जल्द तुम अपने इंजाम को पहुँचोगे, और वाकई ऐसा हुआ, कम इस्तमता लजीन मिन क़ब्लिकुम भी खलाक़िहिम, जैसे कि इन लोगों ने अपने हिस्से का फ़ायदा उठाया था जो तुमसे पहले थे, वह खुद तुम कल्लज़ी हादू, और वैसी ही बहसों में तुम भी पड़े जैसी बहसों में वो पड़े थे दीन के मामले में, जो पीछे ऊपर गुजर गया, तुमने भी वो रविश इख्तियार की जो उन्होंने की थी, उलाइका हबितत आमालहुम फिद दुनिया वल आखिरा, ये वो लोग हैं जिनके तमाम आमाल ज़ाया हुए दुनिया और आखरत में, वो उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारा पाने वाले हैं। कैसी धमकी है, ऐसे लगता है तबाहशुदा कौमों के साथ अल्लाह ने मिला दी, इसीलिए अगली आयत 70 में फरमाया अलम यातीम नबउल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, क्या इनके पास इन लोगों की खबरें नहीं आ चुकी जो इनसे पहले थे, कौमी नूह व आद व समूद व कौमी इब्राहिम, कौम नूह आद समूद और कौम इब्राहिम, ये कुरान पाक का वाहिद मुकाम है जहाँ कौम इब्राहिम का तذکرہ इस अंदाज़ में आया कि शायद आपकी कौम पर भी कोई अजाब आया हो, वरना पूरे कुरान पाक में हज़रत इब्राहिम पर ज़ाती इनफ़िरादी आजमाइशें और मुश्किलात जो हैं उनका तذکرہ तो है, कौम का जिक्र नहीं, लेकिन यहाँ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वाज़े तौर पर किसी अजाब का जिक्र कौम इब्राहिम के साथ नहीं है। और अगली कौम वसखावी मदयन अवल मोतफिकाती, और मदियन के लोगों और इन बस्तियों की खबरें जो उलट दी गई, क्या हुआ था इनके साथ? फरमाया, अतत हम रुसुलुहुम बिल बैजिनात, आ गए इनके रसूल इनके पास रोशन दलीलों के साथ, लेकिन फमा कान अल्लाह लियज़लिमहुम, बस अल्लाह ऐसा था ही नहीं कि उन पर जुल्म करता, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि वो अपने ऊपर खुद ही जुल्म ढाते रहे। यहाँ पे वो कहते हैं कि बात पूरी हुई मुनाफिकों की। अब थोड़ा सा इसको पलट कर देखिए, मुनाफिक कौन है? दिल का रोगी। आप और मैं अपने ऊपर लीजिए, देखिए सूरत बकरा के शुरू में क्या पढ़ा, वमिन अन्नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमोमिनीन। आयत 7 से शुरू करके 20 तक 12 आयतों में अल्लाह सुबहाना ताला ने मुनाफिकों की अलामतें थी, याद है? युखादिउन अल्लाह, ला यशरून, तकजिबून, इज़ा लकुल्लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना, वो सारी सिम्टम्स तकरीबन हमने जमा जब की थी तो आई थिंक सो कि 10 से 15 बनती हैं, उसके इन बिटवीन है। अब यहाँ आपको एक दूसरी चेकलिस्ट मिल रही है, मुनाफिकीन का तारुफ है ये। याद रखिए कि पिछली आयतों में अल्लाह ने इशारतन फरमा दिया कि मुनाफिकों के हाल अब खुलने वाले हैं और खुलते जा रहे हैं, क्योंकि अपने तर्ज अमल से कुफर का रवैया अख्तियार कर चुके हैं, और असल में अब इनका शुमार मुसलमानों में नहीं बल्कि कुफार में हो रहा है। इसके बावजूद जो मुनाफिक थे, बड़े गौर से सुनिएगा ये बात, हर मुमकिन कोशिश करते थे कि वो अपने आप को मुसलमानों में इस तरह घुला मिला रखें कि इनका शुमार मुसलमानों से बाहर ना हो। अगर कभी मुसलमानों को शिकायत पैदा होती तो कस्में खाते हुए उनको इत्मीनान दिलाते, लेकिन इसका मतलब देखिए कि फिर भी मुनाफिक होने के बावजूद उनको इस चीज़ का शौक था भी कि हमारा नाम इस्लाम के साथ लगा रहे। फासिक तो इससे भी बढ़ जाते हैं। अब जब अल्लाह ताला ने सूरत में मुशरिकीन और अहले किताब को अलग किया तो मुसलमानों को एक अलग उम्मत की हैसियत दी और बताया कि अब तुम तो रोम की तरफ जा रहे हो, तुम्हारी एक इनफरादी शख्सियत होगी। अब मुसलमानों को वॉर्न किया जा रहा है कि कलमा पढ़ने के बावजूद भी कुछ लोग अंदर से अभी तक खोटे हैं, तो लिहाजा उनको अपने गिरोह से ज़रा अलग ही रखो ताकि आस्तीन के इन सांपों को तुम पहचानो, इनको अभी से अपनी सफ़ों से बाहर निकाल दो। और याद रखिए, किसी गिरोह में अगर एक निफाक वाला शख्स दाखिल हो जाता है पूरी टीम को वो जंग लगा देता है। जैसे एक वो कह लीजिए कि चने का दाना जिसमें कोई कीड़ा हो वो बाकियों को भी दागी करता है। शुरू में ही अगर ऐसे लोग अलग हो जाए ना तो कम नुकसान होता है, उम्मीदें कम लगे उनसे तो नुकसान कम होगा, लेकिन अगर वो उम्मीदें दिलाकर बाद में आकर जब बीच रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबई की तरह मुकाम शौत पे अलग होते हैं ना अपनी जानों को बचाकर, फिर इस्लाम का नुकसान ज़्यादा होता है। लेकिन मसला क्या है, अल्लाह के नबी को तो किसी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपकी आदत क्या थी कि किसी को जाने नहीं देते थे, आपका अख़लाक भी ऐसा था। और वैसे भी देखिए, जब शुरू शुरू के दिन होते हैं किसी भी तहरीक के तो एक एक बंदा हज़ार के ऊपर होता है, एक एक बंदे के आने की ऐसे खुशी होती है जैसे 100 लोगों के आने की हुई, तो बंदा कहता है चलो कुछ नहीं बाद में ठीक हो जाएंगे, तस्किया हो जाएगा, तरबिया होगी। खैर मैं इस जुमले को नहीं मानती, लेकिन मैंने कई लोगों से ये सुना है कि उस्ताज़ा लोग नहीं बदलते। हालांकि मैं मानती हूँ कि कुरान ज़िंदगी में दाखिल रहे तो एक वक्त आएगा बदलेंगे। अगली आयतों में बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम देखेंगे कि ईमान वालों को कैसे फिर दूसरों को निफाक से लेकर आना, यानी इस अगली आयतों का टॉपिक ही ये है कि हैं खुदा भी ईमान वाले लेकिन दूसरों को मुनाफ़िकत से कैसे निकालें, सब्र और हौसला उसमें चाहिए होता है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो अल्लाह सुब्हान तआला ने ये बात करके पहले तो मर्दों और औरतों का अलग जिक्र किया। आज हमारे यहाँ क्या कहते हैं, औरत मर्द की शरीकेकार। याद रखिए, मुनाफिकून और मुनाफिकात को अलग कहकर ये बता दिया कि औरतों का एक अपना फील्ड है, मर्दों का एक अपना फील्ड है, हर एक की एक अपनी आइडेंटिटी भी है। इसमें एक वो भी सोच है कि औरत तो बस भी मर्द की गुलाम है, शौहर जो चाहेगा वो करेगी, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगी। तो यहाँ एक औरत की एक अपनी शख्सियत का जिक्र है। आप ये नहीं कह सकती मेरे शौहर ने मुझे ऐसे बना दिया, मेरे शौहर को मेरा ये किरदार पसंद है, ये है वो है, पहली बात है। दूसरी बात, इससे क्या पता चलती है कि एक इंसान जब मुफाद की तरफ आता है, दुनियावी फ़ायदे उसके सामने आते हैं ना, तो अमूमन मुनाफ़क़त का कीड़ा घुस जाता है। आपका अगर कोई कंसर्न ना हो, मसलन मैं सोचती हूँ मर्दों के लिए अगर कोई बहुत ज़्यादा बच्चों की जिम्मेदारियाँ ना हो तो वो कम से कम मुनाफ़क़त में जाएंगे, और औरतों को अगर अपने बच्चों के रिश्ते और घरों को सजाने और संवारने का फिक्र ना हो तो निफाक बहुत कम होगा। तो क्या पता चला, कुछ अलामतें यहाँ जो जमा हुई हैं उसको 1 2 3 करके दोहरा लीजिए। पहली अलामत क्या होती है कि इनकी सोच एक होती है, सब मुनाफिक मर्दों औरतों की सोच एक होती है, लाइक माइंडेड होते हैं, इरादे एक, इनके हदफ एक होते हैं, इनके गोल एक होते हैं। और ये कहें कि ये सब मुफाद के बंदे हैं, ये अपने फ़ायदे की खातिर इस्लाम में आते हैं और अपने फ़ायदे की खातिर ही चले जाते हैं। दूसरी बात, एक दूसरे से जिस्मानी नहीं कल्बी रिश्ता भी है इनका। ये बहुत खुश होते हैं ऐसी सोसाइटीज़ बनाकर, ऐसे कल्ट बनाकर कि जहाँ शैतान को प्रमोट किया जाए। दूसरी बात, हर मुमकिन तरीके से बुराई का हुक्म और नेकी से रोकते हैं। आप अब ज़रा से इसको देखिए, रमज़ान पूरा गुजार देंगे कुरान के साथ और ईद से चंद दिन पहले टिकट बेचना शुरू कर देंगे उन ईद डिनर्स के जिसमें हर गुनाह है। कहते हैं कर लिया ना अब दौरे कुरान, पढ़ जो लिया अब कुरान, अब देखेंगे क्या होगा। इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या होता है कि हम दुनिया में बड़े बने, कोई प्लेटफॉर्म बनाकर, कोई फोरम बनाकर, सर उठाकर, और फिर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हिदायत दे, आज जो नशर व इशाअत के ज़राए और मीडिया ने इन चीज़ों काम किया है, ऐसे बंदे को पूरी दुनिया अवार्ड्स दे रही है। आपको पता है, मैं नाम ना लूँ तो बेहतर है, आप एक सेकंड में समझ जाएंगे। वो औरतें, वो लड़कियां, वो मर्द आज के दौर में जो मुसलमान माशरों से निकल कर इन माशरों में आकर बातें करते हैं, हर मुल्क उनको अवार्ड दे रहा है। आपके इस मुल्क ने उसके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए, मुझे किसी की पता भी नहीं, लेकिन जो मैंने देखा, वल्लाही मैं एक जगह बैठी थी और आवाज़ बंद थी, लेकिन स्क्रीन पे नॉर्वे का नाम लिखा हुआ आया और कुछ साथ पीछे स्पीच थी और नीचे उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन थी। अल्लाह अकबर, मैं कह रही थी कि आप जैसे दोस्तों के होते दुश्मनों की ज़रूरत नहीं। कि एक बच्ची, और वो जिस रंग में इस्लाम मुसलमानों का या पाकिस्तान में औरतों पे जुल्म और सितम, और फिर अपने चेंज होने का बता रही थी, और जो क्लैपिंग थी, और जो बाद में उनको रिवॉर्ड और रिवॉर्ड, आपको क्या पता वो मुल्क जिधर लोग उछल उछल के जाना चाहते हैं, उनके उनको वो नेशनलिटीज़ दे रहे हैं कि ये बच्ची है जो उठी है, ये है जो इस्लाम का नाम बुलंद कर रही है कि औरत को आज़ाद होना चाहिए। कहती मुझे वो दिन आज भी याद है जब मेरा बाप मुझे खुद लेकर गया, मेरे सारे बाल कटा के लड़का बनाया मुझे, फिर मुझे आज भी मैं अपने बाप की वो नेकी याद करती हूँ जिसने उसने मुझे साइकिल लेके दी और उसने कहा ये गांव वाले जो तुझे देखते हैं देखने दे, तू साइकिल पे चल। तो जो हाल में तालियां थी इन बातों पे कि ये असल में लिब्रेशन आज़ादी, और ऐसे लोगों को लोग आज हाथों हाथ ले रहे हैं, सदर, वजीर, प्राइम मिनिस्टर के पता नहीं कोई कारनामा किया तो इन्होंने किया, सिर्फ ये कि ये इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। ये लोगों को दिखाते हैं कि हमारे मुल्कों में औरतें बड़ी दबी हुई हैं, पिसी हुई हैं, ये है वो है, तो ये है यामरूना बिल मुनकर, सर शर्म से झुकता है, अल्लाह तो देखता है। दुनिया सारी भी आपको तमगे दे दे, मेडल दे दे, अपने मुल्कों के वीज़े नेशनलिटियाँ दे दे, अल्लाह जब चाहेगा आपका ज़मीन में चलना फिरना तो उबर कर देता है। याद रखिए, बहुत आसान है अपने फ़ायदे के लिए इस्लाम को दाव पे लगाना, आज के दौर का शुगल ये हो चुका है। जिसको बुरा बनाना है आप चंद जुमले दीजिए और वो मीडिया पे आके बोल देंगे, और ऐसे लगता है जैसे मुर्गियों की लड़ाइयाँ हो रही हैं। लगता नहीं ये लीडर्स हैं, लगता नहीं ये नुमाइंदे हैं, लगता नहीं कि किन ना समझो ने इनको इलेक्ट किया है, जिस एंगल में आ जाके मीडिया पे पेश किया जाता है। और आप यकीन करें, ईद के प्रोग्राम हो, मैं तो देखती नहीं हूँ, शायद इसीलिए मेरा ख्याल है कि मैं मुतमईन हूँ, लेकिन जहाँ भी नज़र पड़ी है दिल रो के उठा है, दिल रो के उठता है। ये हमारा दीन, ये हमारा कल्चर, ये हमारी चॉइस बन गई है। इसको आप कहते हैं जुगतबाजी, हुल्लड़बाजी। कल के दौर में लोग इनके अजीब नाम लेते थे, मैं वो भी नहीं लेना चाहती। लोग ऐसे लोगों को थर्ड क्लास लोग सोचते थे, भांड कहते थे, कुछ और कहते थे। आज आप देखिए क्या, और आप देखिए तीसरी चीज़, यक भी दू नई दिया हूँ, हर खैर के काम से हाथ उठाने वाले। वो एक जुमला कई दफ़ा मैंने खुद भी बोला है कि कुछ लोग खैर की चाबियाँ और शर के ताले होते हैं, और कुछ लोग इससे अपोजिट हैं, खैर के ताले और शर की चाबियाँ। मुनाफिक खैर का ताला है और शर की चाबी है। हर मुमकिन खुद भी रुकते हैं, बुखल इनका शेव है, किसी पे एक पैसा लगाना दूर की बात, और जहाँ दीन की बात हो वहाँ तो जान ही निकल जाती है, और बुराई के कामों में दिल खोल के एक एक वीडियो पे 50-50 हज़ार करोन। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़रा सोचिए किस तपाक से म्यूजिशंस को पैसे दिए जाते हैं, शादियों के, दावतों के, खानों के, कपड़ों के, गाड़ियों के, हेलीकॉप्टर में बैठ के आ जाओ, लेमोजिन में बैठ के आ जाओ, और जब दीन की बात तो आना पाई, पैसा किधर आता है, किधर से जाता है, कौन देता है, किस पे खर्च होता है। इतनी रिसर्च करते हैं कि इतनी रिसर्च मुसलमानों ने शायद दूसरे कामों में की होती तो आज हम भी को आईफोन के मुकाबले पे एक और अच्छी चीज़ बना चुके होते हैं। हाथ बंद करने वाले, हर खैर के मौके पे जान ही चली जाती है। यानी कह लीजिए कि जान देने वाले नहीं जान बचाने वाले। फिर चौथी सिफत देखिए, बुरी आदत इतनी पड़ी कि अल्लाह को भूल गया। अल्लाह को भूलता ना जब बंदा, तो बस फिर कह लें कि अब वो आ गया शामत में अपने अमल की। अल्लाह को भूलने से क्या मुराद है? पहली बात, इस ज़िंदगी में लगता ही नहीं कि अल्लाह नाम की कोई हस्ती है जिसके हुक्मों को मानना है। नमाज गई, आमाल की बाज़ पुरस से बेनियाज है, अल्लाह कल हिसाब लेगा ये भूल गए, अल्लाह मेरे इस काम से नाराज़ है कि खुश है भूल गए। चंद लोगों की खुशी के लिए अल्लाह को नाराज़ करके आते हैं। और याद रखिए, सबको राज़ी करना, रब को नाराज़ कर देना, ये बंदा ईमान पे नहीं है। मत पूछिए किसी को, अपने आप को देखिए। मैं भी देखूँ, क्या मैं लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करती हूँ अभी भी? क्या मेरी ज़िंदगी में लोग अभी भी इतने बड़े? और लोग क्या मेरे अपने प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे शौहर, बच्चे, घर वाले, क्या मैं उनकी खुशी के लिए अल्लाह को नाराज़ करती हूँ और फिर खुश भी दिखती हूँ? लोग क्यों नहीं पूछते मेरे चेहरे को देखकर तुम्हें क्या गम है? तो आप कहें मैं ये सब देख के रो रही हूँ, मैं दुखी हूँ इस बात पे। और याद रखिए, आम लोग, कुफार, फासिकीन, या कोई दूसरा गलत काम करे, लोग उसको बुरा नहीं कहते। उनको पता है ये नाइट क्लबों के आबाद करने वाले, उनको पता है शराब की दुकानें इनके नाम पे चलती हैं। लेकिन आम जो गाफिल मुसलमान है ना, वो भी कुछ कर ले, लोग कहते हैं चुप करो, हम सब एक जैसे हैं, एक इमाम में सब एक जैसे। बट जब कुरान में से गुजरा हुआ, कुरान पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, थामने वाला ऐसे काम करता है, वल्लाह ही लोग उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे होते, इज्जत नहीं कर रहे होते, वो शर्मिंदा हो रहे होते हैं। उनको देखकर कहते हैं ये कुरान पढ़ कर ये करना है, तो हम तो बग़ैर पढ़े बेहतर हैं, ये मजबूर है आज, तो हम तो पहले ही बड़े मजबूर हैं, ये इस वक्त इस मामले में वॉकआउट नहीं कर सकते तो हम क्यों करें? ये भी खाने के इंतज़ार में बैठे, हम भी खाने के इंतज़ार में बैठे हैं, ये भी तोहफ़ा देने के बहाने आए, हम भी तोहफे के नाम पे, ये सिला रहमी के तानों के लिए आए, हम भी इसी तानों पे। कभी सोचिए आज हमारी एक खुशी, मैं कोई छुपाती नहीं, सिर्फ कोई एक खुशी बताइए, फ़नसुल्लाह वाली कैफियत नहीं होती? आज तो मुझे लगता है कि अल्लाह माफ़ करे कि हमारी क्या हैसियत होगी अपने लोगों की नज़रों में, अपने में, यानी नीचे से नीचे दर्जे में भी हैं, तब भी जब तक हम रब को ना भूलें, हमारी एक खुशी नहीं पूरी होती। ऐसे लगता है कि नज़रअंदाज करेंगे तो नबी को, अल्लाह को, फरिश्तों को। आते हैं नबी हमारी महफिलों में, ऐसी फरिश्ते आते होंगे, और बुलाते हैं दीन वालों को हम ऐसे मौक़ों पे। उनको तो एक दो दिन पहले बुला के दरस कर करा के खाना दे के भेजते हैं, अब घर जाएं ढोलक आ रही है। हम तो ये सोचते हैं, वल्ला ही हमने खुद अपनी शादियों की बरकत तोड़ी, और अल्लाह की कसम अभी ये कोई चंद दिन पहले बता रहा, सिर्फ 3 महीने में शादी टूट गई है, और शायद 3-4 साल पहले से तैयारियां हो रही थी, सिर्फ 3 महीने में बरकतें गईं। फनसुल्लाह फनसियहुम। और आगे आप पढ़ेंगे, व मैं याशन ज़िक्र रहमानी नुकैस लहू शैतान फहुव लहू करीन। जो रहमान के ज़िक्र से एराज़ करता है, उसकी याद बुला देता है, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत करते हैं, बस वो हर वक्त उसके साथ लगा रहता है। यानी वो बंदा आना भी चाहता है ना हिदायत पे, तो शैतान उसको वापस ले जाता है, मुस्तकिल उसके सर पे एक वो पुलिस मैन खड़ा है कि शैतान के नरगे में। तो ये काम कब होगा? जब अपना मुहासबा होगा, सबको भूल कर आईने में खुद को खड़ा कर लें। और मैं तो कहती हूँ अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मेरी अपनी औलाद हो और वो मुझे कहे कि माँ तुम्हारे बगैर भी नहीं मैंने शादी करनी, और इन चीज़ों के बगैर भी नहीं करनी, सारे शहर को बता दूंगी कि मेरे बगैर हो जाएगी अगर इसके उसके, मैं नहीं जाऊंगी उसकी शादी में, और अल्लाह ना करे मेरा बच्चा ऐसा हो। मैं अल्लाह को दिखाना चाहती हूँ कैसा हो कि अल्लाह ताला तेरे लिए नाराज़ हूँ दुनिया से, मुझे क्या लगे, मुझे किसी ने क्या दिया, मेरे सर में दर्द हो जाए कोई ठीक करता है, मेरे पेट में दर्द हो कोई ठीक करता है, मेरा शौहर मुझसे नाराज़ हो उसको कोई खुश करता है मुझसे, अगर मुझे दुनिया में कोई मुश्किल पड़ जाए, है कोई जो मेरा एक अटकती हुई सांस, एक खाने का लुकमा अटका हुआ है वो मेरे खलक से निकालता है? मुझे इन भाइयों की क्या परवाह है, मुझे इन बहनों की क्या परवाह है, मुझे इन माँ बाप की बातों को मान के अजर नहीं मिलना अगर वो तुझे नाराज़ करें, क्योंकि मैंने समा और अतात का बंधन तुझसे बांधा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मैंने वादा तुझसे किया है, सारी मुराद तो मुझे इस इस्लाम से मिली, इज्जत तो मुझे इस इस्लाम कुरान से मिली, और मैं इज्जत लेने दूसरों को चली। याद रखिए ये हमारी बेइज्जती है, वल्लाही ये बेइज्जती है। अब हमारी इज्जत बस एक चीज़ में है कि बस जो है अल्लाह के लिए, जो दिया अल्लाह के लिए दिया, जो लिया अल्लाह के लिए, जो छोड़ा उसको अल्लाह के लिए छोड़ा, जो अपनाया उसको अपनाया। 4 चीज़ें हैं हदीस में कि मना आता लिल्लाही वन मना लिल्ला, दिया तो अल्लाह के लिए, दिया तो अल्लाह के लिए, अब गज़ा लिल्ला व अहब्बा लिल्ला फ़कद इस्तकमल ईमान, उसने ईमान को पूरा किया। ईमान नहीं है, ये निफाक है। नाम नहीं लिखा था मुनाफिकों के मातों पे, नाम नहीं था। आज हमारी अगर दो रुखी चाल नहीं पूरी हो रही तो याद रखे निफाक है। और आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी अगली आयत आ रही है कि दर्जे होते हैं। देखिए एक दर्जा पता है किसका है, नया बंदा। अभी जुमा जुमा 8 दिन दीन की तरफ आया, अब आप उसको पकड़ के मौलवी बना दें, दाढ़ी निकाल दें, वो सब छोड़ दें, ये आपकी बेवकूफ़ी है। ऐसा नहीं करना। या अमरूना बिलमारूफ के स्टेप्स अगली आयत में लिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह, बट अब बात हो रही है तो समझ लीजिए। एक है बच्चा ग्रो हो रहा है, अभी पैदा हुआ, अभी 6 महीने का, अभी साल का, हर 6 महीने बाद आप देखते हैं उसमें कैफियत चेंज हो रही है। फिर एक वक्त आता है माशाल्लाह जब स्टेबल हो जाता है, उसके बाद फिर मसला होता है। अब शुरू में एक बच्चा बढ़ नहीं रहा तो भी गड़बड़ है, ये भी मसला है। लेकिन अब 15 साल का होने के बाद या 20 साल के बाद फिर भी कद बढ़ता ही जा रहा है, ये भी गड़बड़ है। हम सब जानते हैं कि एक स्टेज पे आके हमारा जिस्म रुक जाता है, अल्लाह की रहमत है ये भी, वरना नहीं, वरना हम क्या जिन बन चुके होते। दांत रुक जाते हैं, लंबे ही होते जाते, क्या होता, बाल ही लटकते रहते, क्या होता, उंगलियां ही लंबी होती तो क्या होता। बिल्कुल इसी तरह याद रखिए कि ईमान के दर्जे हैं। पहला दिन, पहला महीना, पहला साल, दूसरा साल, इट्स ओके, अभी बेबी हैं। अभी आज पहला साल है आपका, आप 1 महीने के बेबी हैं, आप 2 माह की बेबी हैं, अभी एक दौरे कुरान आपकी ज़िंदगी में, अब दूसरा, अब तीसरा, इट्स ओके, होगा, अभी अभी ईमान ग्रो करेगा। बट अगर एक जगह आके जमेंगे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, फिर कब, फिर इस कुरान के ऊपर अमल कब, फिर जुरत कब, फिर ईमान का इजहार कब, फिर अलहुब्बु फिल्ला कब और अलबुग्जु फिल्ला कब, फिर भी लड़मड़ की दुनिया से जाने। मैं कहती हूँ हम आखिरी दिन मरते हुए भी मजबूर ही होंगे, सिर्फ लोगों के हाथों, और यही सजा है और यही हमारा मसला है। इसीलिए लोग हम पे चढ़ाई करते हैं, हमसे गलत उम्मीदें रखते हैं क्योंकि हम पूरी करते हैं। एक दिन प्यार से कह दीजिए कि मियाँ साहब मैं आपकी 100 बातें मानूंगी, सर आंखों पर आपका हुक्म, एक नहीं 10 कप चाय के बनवाए खुशी से बनाऊंगी, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा खाइए मैं करूंगी, एक जोड़ा नहीं 4 जोड़े बदलिए दिन में, और करके दिखाइए फिर, बातों से नहीं। लेकिन मैं आपको आज एक बात बता दूं कि ला तअली मखलूकन फी मासियतिल खालिक, मैं खालिक को नाराज़ नहीं करूंगी आपके लिए, हालांकि मुझे प्यार बड़ा है आपसे, इज्जत भी बड़ी, मैं आपके बगैर रह नहीं सकती, पर मैं अपने रब के बगैर तो जी नहीं सकती, मैं तो सांस नहीं ले सकती। क्योंकि आप देखिए आगे वादा है, हिया हसबुहुम, जहन्नुम के बाद है मुनाफिकों के लिए, यह आयत काफिरों की नहीं है। हम कहते हैं काफिर बेचारे जहन्नमी, 3 वादे हैं। आप देखिए अगर ज़रा आयत को खोले, मेरी नज़रें आयत पे ही हैं कि जहन्नम में डाले जाएंगे वो काफ़ी होगी और वो उसमें पड़े रहेंगे। ये कौन आएंगे? ये मुसलमान मुनाफिक हैं, ये वो मुसलमान हैं जिनके साथ, और वाद अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ने जब वादा कर दिया कुछ मुसलमानों की खोपड़ियों को आग में पिघलाने का, आप मैं जितने मर्ज़ी लिबरल हो जाइए, जितने मर्ज़ी नरम दिल के हो जाइए, मैं आप इसको नहीं बदल सकते। और याद रखिए मुसलमानों के ये जुर्म या तो दुनिया की बीमारियों, सज़ाओं, तकलीफ़ों और ज़हनी अजाबों से जाते हैं, या फिर जहन्नुम में जाकर साफ होंगे ये गुनाह। ये मुनाफिक कौन है? बेअमल मुसलमान है, ये ज़ुबान की बातें करने वाले। और फिर आप देखिए लंबी लिस्ट है पिछलों की, क्या कौम नूह काफिर थी, कौम समूद काफिर थी, कौम लूत काफिर थे, मुसलमान थे। नबी सामने खड़ा है और नबी के आगे बदतमीज़ियाँ करते थे, अल्लाह ने उठाकर पटक पटक के मारा, किसी को पानी में डुबोया, किसी को ऊपर से निकारा खींचे, क्योंकि आतत हम रसूलों बिल बैनात, हमारे पास भी हमारे रसूल की बैनात आ गई, ये अलबैना तो हमारे हाथों में पड़ी हुई है, ये कुरान तो हमारा है। और देखिए अल्लाह कहते हैं फ़मा खान अल्लाह यस्लिमा, अल्लाह जुल्म नहीं करता, वला किन खान अनफुसम यस्लिमान। आज एक चू चू का मुरब्बा बन गया मुसलमान, इंसानी मामलात में बहुत अच्छे हैं, औरतें कहती हैं मेरे शोहर मेरे हक में बहुत अच्छे हैं, बच्चों के मामले में बड़े प्यारे बाप हैं, माँ के तो इतने फरमा बरदार हैं, पाँव दबा के सोते हैं, अच्छा नमाज वो पक्की नहीं थी, अच्छा और सुनाइए, कर्जे तो बहुत हैं, ये तो बड़ा। मैं सोचती हूँ वो मालिक है जो फैसले करेगा, मैं आप नहीं कर सकते, अपने क्या करें, किसी के क्या करें, उसने क्या हमें मरने के बाद परचोल करनी है। और यकीन करें एनी टाइम हम इस ज़मीन के ऊपर से नीचे जा सकते हैं, खड़े खड़े हमारी जान जा सकती है, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए हमारा दिमाग काम करना छोड़ता है ना, हम ज़मीन के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। आज तो ऐसी ऐसी तकलीफ़ें, बीमारियां, अल्लाह सबको बचा के रखे, महफूज रखे, तो हमेशा अपनी फ़िक्र करें। ये आयतें तो हकीकत में बंदे को परेशान करती है, और सहाबा और सहाबियात, हर बंदा अपने ऊपर निफाक का शुबा रखता था। 80 लोगों के नाम है तारीख़ में रकम, जिसमें हज़रत आयशा का अपना नाम भी है, जो खुद पे निफाक का शुबा रखते थे। हज़रत उमर हज़रत हुज़ैफ़ा के पीछे भाग भाग के फिरते थे कि हुज़ैफ़ा सिर्फ इतना बता दो कि मेरा नाम तो उस लिस्ट में नहीं था जो अल्लाह के नबी ने तुम्हें बताई, क्योंकि ये इरादे करते थे अल्लाह के नबी को तकलीफ़ देने के, मारने के, लेकिन अल्लाह ने उनको बचा लिया था। तो बहरहाल अल्लाह आपको मुझे बचाए। कोई बात आप कहना चाहें तो जी आप
इसी चोट लगी फिर के तो डरने की बात
जी, यानी जो चीज़ का मजाक उड़ाया अल्लाह ने उसी में अपने आप को मुलतवा कर दिया। और ये बात कर रही हैं तो मुझे फिर वो चंद चीज़ें आंखों में आ गईं जो आजकल बकरों के नाम पे हो रही हैं। अगर आप किसी ऐसे मैसेज को अगर आगे कहीं डालते हैं ना, तो आप समझिए कि आपका भी मिजाज यही है, नहुद व नाला। देखिए, जिस चीज़ का मजाक उड़ा लिया जाए ना, उसकी इज्जत नहीं रहती, सेंक्टिटी ख़त्म हो जाती है। चूँकि यहूद ने अम्बिया का मजाक उड़ाया, तौरात का मजाक उड़ाया, वो निकल गई। आज मैं देखती हूँ, और मैं रात को पता नहीं किसी को कोई मैसेज कर रही थी, तो जब आप अपनी वीडियोज़ में जाते हैं वहाँ दिखते हैं मैसेजेस कई, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है। जब मैंने खोला, अस्तग़फ़िरुल्लाह, बकरों को जिस तरह से आजकल पेश किया जा रहा है, मैं कहती हूँ क्या 2-4 सालों बाद हमारे बच्चे कुर्बानी के बकरे को कोई बाइज्जत चीज़ समझेंगे? कुर्बान तो इधर होते नहीं देखे, और जो उनके फजूल जोक और मजाक देखे। तो हमेशा अपने बच्चों को भी समझाएं, ये अपने घर में से भी कोई भेजेगा तो मैं कहूँगी ये थर्ड क्लास बनता है, इसका मिजाज कितना अनपढ़ों वाला है, ये कोई हंसने वाली बात है, कोई जोक वाली बात है, ये कोई बात है करने वाली? हमारी कौम ऐसे हो गया है, अनपढ़, जाहिल, गंवार। बल्कि अगर कोई ऐसा बंदा भेजे, उसको फ़ौरन जवाब में लिखिए यही आयतें लिख के भेज दीजिए कि आपको डर नहीं लगता अल्लाह से, डिस्करेज कीजिए जी आप।
अगर कोई फंक्शनों में जो है ना हम भी वही करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं आएंगे?
जी हम लोग कोई अलग से तो नहीं है, बस इस पे तो आप हम की बजाय मैं पे ले आइए, क्या इतनी भी जरूरत नहीं है? और वल्लाह ही मेरी बात लिख लें, आज लिख लें, दिन, मैंने ये बात शायद पिछले 15 साल में शायद 20 बार कही होगी, जब तक मैं और आप इन महफिलों का बाइकॉट नहीं करेंगे, ये ट्रेंड नहीं चेंज होंगे। अगले भाई के घर भी शादी ऐसे ही होगी, अगले भांजे भतीजे की शादी भी ऐसे ही होगी, क्योंकि आप रोते धोते पहुँच तो फिर भी जाएंगे। भाई को पता चल जाए 4 बहनें आई थी, एक नहीं आई, अगली दफ़ा नहीं करेगा। हदीस में गूंगा शैतान है कि हक बात सामने आए और वो बोल ना सके, गूंगा बन है।
समकाया हुआ है, अभी तक मैं ठीक नहीं हो रही। इस तरह की हालत है कि मैं समझती हूँ कि वहाँ वहाँ नमाज का भी टाइम हुआ, मैंने कहा अजान चला देते हैं, तो कहते हैं नहीं अजान नहीं चला सकते।
ये मुसलमानों की महफिलें हैं, गैरों को तो छोड़ दीजिए। आप क्या कहते हैं फलां आपके पर्दे पे पाबंदी लगाता है, और वो तो कल आपकी अजानों पे भी लगा सकते हैं, वो तो मस्जिदों में भी लगाएंगे, क्योंकि जब आप खुद मजाक उड़ाते हैं अपना, तो दूसरे क्यों ना उड़ाएं? और याद रखिए, ज़रूरत फिर अल्लाह की है। मैं तो आंखें नहीं उठा सकती रब के आगे कि मैं किस तरह तेरी बात के मुकाबले में किसी की मानूँ। और वाकई मुझे हज़रत उमर की बात याद आती है कि अल्लाह के नबी हमारे रिश्तेदारों को हमारे हाथों में दे, हम अल्लाह को दिखाएं कि हमें अल्लाह प्यारा है कि अपने रिश्ते प्यारे हैं। वो तो जंगों में ये बातें बोलते थे, हम तो खुशियों में नहीं बोल पाते। और कोई काफिर नहीं है हमारे रिश्तेदार, कोई रिवॉर्ड्स नहीं है हम, और वो कोई खुदा छोड़े हुए नहीं, नमाज रोज़े के पाबंद लोग हैं, नमाज़ें पढ़ के ही जाते हैं घरों से कि अब जाके फिर पता नहीं क्या होने वक़्त। तो इसकी सोच कर पैदा करने की ज़रूरत है, और इसमें मैं तो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होती ये बातें करते हुए। आज हम मुसलमानों की हर मुश्किल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम दूसरों को दावत क्यों नहीं दे पाते, इसलिए सीखा ही नहीं है। मिसाल लें एक छोटी सी, कि आप देखते हैं इस शहर में बहुत बीमारी फैली हुई है, अब आपका दिल कर रहा है आप इस बीमारी को ख़त्म करें, दिल चाहता है ना? अब जब बीमारी है तो आप उस बीमारी का इलाज कैसे करेंगे? पढ़ेंगे, डॉक्टरी पढ़ेंगे, उसका मेडिसिन का तरीका पढ़ेंगे, फिर ही जाएंगे ना। तो आप इस बीमारी को अब ले लीजिए, ये गंदगी की बीमारियाँ, गुनाहों की बीमारियाँ, अब आपका दिल कोड़ रहा है, इसलाह करनी, इसी का तरीका अब आगे पढ़ने वाले हैं, तो फिर हम क्या करेंगे उस वक़्त? फिर हम उस इस्लाह के अंदर पढ़ेंगे। ये इस वक्त मेरा आपका कुरान पढ़ना असल में ये यामुरूना बिल मारूफ का पहला कदम है।
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون